संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है समाचार परिक्रमा। मैं हूं महबूब खान। 17 जुलाई 2020 के इस साप्ताहिक बुलेटिन में शामिल हैं। कोविड-19 महामारी का युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर भी व्यापक प्रभाव, सरकारों का ध्यान खींचने के लिए हुआ एक वेबिनार। कोविड-19 महामारी के कारण टीकाकरण कार्यक्रम भी हुए बाधित, इन्हें जारी रखने की पुकार। स्वास्थ्य महामारी का महिलाओं पर गैर आनुपातिक असर, उनकी नेतृत्व भूमिका भी आई सामने। और कोविड-19 पर अपडेट के साथ साथ होंगे कुछ अन्य समाचार भी। हम आपको याद दिला दें कि विश्व परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। आप अपने मोबाइल फोन पर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है UN न्यूज रीडर। अब समाचार विस्तार से। विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के कारण युवाओं के रहन सहन और मानसिक स्वास्थ्य पर भी व्यापक असर हुआ है। युवजन कोरोना वायरस संकट की नई वास्तविकताओं के मद्देनजर अपनी जिंदगी को किस तरह ढाल सकते हैं और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, इसी विषय पर बुधवार को एक वेबिनार का आयोजन किया गया जिसमें महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने भी शिरकत की। युवा मामलों की दूत जयाथमा विक्रमा नायके वेबिनार सीरीज की संचालक हैं, जिसे उनके कार्यालय के अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने साझा रूप से प्रायोजित किया है। उन्होंने कहा कि चाहे लोग फिलहाल तालाबंदी वाले देशों में रह रहे हों या फिर ऐसे स्थानों पर जहां जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है, हम एक ऐसी वास्तविकता का सामना कर रहे हैं जो पहले से कहीं अलग है। विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 और उससे उपजी आर्थिक मंदी के कारण पिछले 3 दशकों में पहली बार वैश्विक गरीबी में वृद्धि दर्ज किए जाने की आशंका प्रबल हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने ध्यान दिलाया है कि महामारी के अलावा अन्य वैश्विक चुनौतियों व संकटों के प्रति भी सचेत रहना होगा। वहीं मानवीय राहत मामलों में समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने निर्बल देशों को सहायता प्रदान करने के लिए G20 समूह के देशों से ठोस कार्रवाई करने की पुकार लगाई है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रेयेसस ने आगाह किया कि ये बात सही है कि इस समय पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही है, लेकिन ये नहीं भूला जाना होगा कि पहले की चुनौतियां और संकट अब भी बने हुए हैं।
Many countries, especially in Africa and the Middle East, are still reeling from years of conflict and other humanitarian crises. COVID-19 threatens to exacerbate.
अफ्रीका और मध्य पूर्व के कई देश सालों से चले आ रहे हिंसक संघर्षों और मानवीय संकटों से जूझ रहे हैं, जहां कोविड-19 इन हालात को और भी ज्यादा गंभीर बना सकता है। यूएन एजेंसी के प्रमुख ने कहा कि पिछले साल 69 करोड़ लोग भुखमरी का शिकार थे, लेकिन तालाबंदी और अन्य सख्त पाबंदियों से इस साल के अंत तक 13 करोड़ अतिरिक्त लोगों के भुखमरी के गर्त में धंसने की आशंका है। अब तक कोरोना वायरस के 1,30,00,000 से ज्यादा संक्रमणों की पुष्टि हो चुकी है और 5,80,000 से अधिक लोगों की जान गई है। यूएन एजेंसी के महानिदेशक ने मानवीय राहत एजेंसी की उस योजना का भी जिक्र किया जिसके तहत 63 जरूरतमंद देशों में मौजूदा संकटों से निपटने के लिए सहायता प्रदान करने की पुकार लगाई गई है। विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों का आह्वान करते हुए मानवीय राहत मामलों में समन्वय के लिए यूएन एजेंसी ने कहा है कि G20 समूह के देशों को अपनी मदद का स्तर बढ़ाना होगा। इसके तहत निम्न आय वाले 63 देशों के लिए $10 अरब से ज्यादा धनराशि की अपील जारी की गई है।
संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 से टीकाकरण सेवाओं में आए व्यवधान के कारण जीवन रक्षक वैक्सीन पाने वाले बच्चों की संख्या में चिंताजनक गिरावट दर्ज किए जाने की चेतावनी जारी की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का कहना है कि इन रुकावटों और सुरक्षा चक्र टूटने से अब तक कड़ी मेहनत से हासिल हुई प्रगति पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
वर्ष 2020 के पहले 4 महीनों के शुरुआती आंकड़े दर्शाते हैं कि DTP3 यानी डिप्थीरिया, टेटनिस और काली खांसी से रक्षा के लिए जरूरी 3 खुराकें पूरा करने वाले बच्चों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। बीते 28 वर्षों में ये पहली बार होगा जब दुनिया DTP3 कवरेज के दायरे में कमी आने का सामना करेगी। DTP की तीसरी खुराक के लिए क्षेत्रीय कवरेज दक्षिण एशिया में पिछले 10 वर्षों में 12% तक बढ़ी है, मुख्यतः भारत, नेपाल और पाकिस्तान में। लेकिन यह प्रगति अब मुश्किल में है और इथियोपिया व पाकिस्तान जैसे देशों में अगर टीकाकरण सेवाएं जल्द बहाल नहीं की गई तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनॉम गेब्रेयेसस ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के इतिहास में वैक्सीन सबसे शक्तिशाली औजारों में एक है और अतीत की तुलना में अब कहीं ज्यादा संख्या में बच्चों का टीकाकरण हो रहा है, लेकिन वैश्विक महामारी के कारण यह प्रगति जोखिम में पड़ गई है। उन्होंने कहा कि नियमित टीकाकरण के चक्र से छूट जाने वाले बच्चों को होने वाली पीड़ा और मौतों को टाला जा सकता है, लेकिन समुचित कार्रवाई के अभाव में इसका असर कोविड-19 से कहीं ज्यादा हो सकता है।
विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के कारण विश्व भर में स्वास्थ्य, मानवीय सहायता और विकास के लिए अभूतपूर्व संकट पैदा हुआ है, लेकिन इस चुनौती से महिला नेतृत्व की शक्ति भी उजागर हुई है। संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव आमिना जे मोहम्मद ने मंगलवार को विभिन्न क्षेत्रों और पीढ़ियों की प्रभावशाली महिलाओं के साथ एक वर्चुअल बैठक के दौरान ये बात कही। इस बैठक में स्विट्जरलैंड की राष्ट्रपति सिमोनेटा सोमारूगा, बारबेडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटले और लाइबेरिया की पूर्व राष्ट्रपति एलेन जॉनसन सरलीफ सहित अन्य हस्तियों ने शिरकत की। ये आयोजन महामारी से उबरने में कारगर समाधानों की तलाश और महिला नेतृत्व की सामर्थ्य में यूएन द्वारा किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा था। यूएन उप प्रमुख ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में दुनिया भर के लोगों ने वो देखा है जिसे हम पहले से ही जानते थे, यानी महिलाओं के नेतृत्व से गहरा बदलाव आता है। देश दर देश तथ्यों ने दिखाया है कि किस तरह महिलाओं के नेतृत्व वाली सरकारें संक्रमण के वक्र को सपाट बनाने और आर्थिक पुनर्बहाली के लिए तैयार होने में ज्यादा कारगर रही हैं। उन्होंने कहा कि हम नेतृत्व को निर्धारित करने वाले तरीकों को आकार देना चाहते हैं और ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम इस महामारी से इस तरह उभरें जिसमें महिलाओं का नेतृत्व बराबर हो और समान साझेदारी हो। हाल ही में जारी हुई 2020 की विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में बाल विवाह के प्रचलन की दर लगभग 21% है और हर 5 में से एक लड़की का विवाह 18 साल की उम्र से पहले ही कर दिया जाता है। लेकिन अनेक भारतीय महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने बाल विवाह की हानिकारक प्रथा के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और शिक्षा व आत्मनिर्भरता को चुनकर अपना जीवन अपने दम पर जीने का रास्ता चुना। बाल विवाह की शिकार कुछ महिलाओं की आप बीती कहानियां हमारी वेबसाइट पर पढ़ी जा सकती हैं। ऐसी ही एक महिला की कहानी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
भारत के महाराष्ट्र राज्य में बीड़ की कृषि क्षेत्र में रहने वाली सोनी के माता पिता काम के लिए गांव से बाहर रहते थे। सोनी 15 वर्ष की थी जब उनके चाचा ने 28 साल के एक व्यक्ति से उनका विवाह कर दिया था। जब सूखे की मार पड़ती है तो सोनी के माता पिता के हालात वाले बहुत से गरीब लोग अपने गांव से पास के क्षेत्रों में जाकर गन्ने के खेतों में काम करने के लिए पलायन करते हैं। इन जगहों पर मजदूरी केवल जोड़े में अनुबंधित की जाती है, यानी आमतौर पर पति पत्नी दोनों को जोड़े में ही मजदूरी के लिए रखा जाता है। इससे अक्सर किशोरियां बेहद असुरक्षित माहौल में पीछे रह जाती हैं। इसलिए उनके परिवारों को लगता है कि विवाह होने पर वो सुरक्षित हो जाएंगी, लेकिन सोनी अपने पति के घर में सुरक्षित नहीं थी। विवाह के कुछ महीनों के अंदर ही घरेलू हिंसा शुरू हो गई। सोनी का कहना है कि उनके पति और ससुराल वाले उन्हें बहुत पीटते थे। सोनी बताती है कि उनके ससुराल वालों ने कहा कि सोनी बहुत अधिक आजाद ख्याल व बड़बोली हैं और वो सोनी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं। सोनी के ससुराल वालों ने कहा कि उनके अंदर बुरी आत्माओं का वास है, क्योंकि वो अपने मन की बात कहने का साहस रखती थी। सोनी को तांत्रिकों के पास ले जाया गया जिन्होंने उनके अंदर से तथा कथित आत्माएं भगाने के लिए सोनी की बहुत पिटाई की। सोनी के माता पिता भी उन्हें वापस अपने पास नहीं लेना चाहते थे। वो कहते थे कि अब पति का घर ही सोनी का भी घर है और सोनी को वहीं रहना होगा।
अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष यानी आईफेड ने भारत के महाराष्ट्र राज्य में तेजस्विनी नामक ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाया है, जिसकी बदौलत लगभग 10 लाख महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। तेजस्विनी कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को व्यवसाय विकास, तकनीकी कौशल और वित्त में प्रशिक्षण दिया गया, जिससे इन महिलाओं ने अभूतपूर्व व्यावसायिक कामयाबी हासिल की है। सुनिए अंशु शर्मा की ये रिपोर्ट।
तेजस्विनी यानी एक कांतिवान महिला, एक सशक्त महिला। भारत के महाराष्ट्र राज्य में तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का हिस्सा बनी 10 लाख महिलाएं वास्तव में सशक्त हैं, कांतिवान हैं।
महिला ये चार भिंतियां गुतलेली होती।
अतीत में विवाहित महिलाएं घर की चार दीवारों के दायरे में सीमित थीं। स्वसहायता समूह में शामिल होने के बाद ही मैंने जाना कि उन चार दीवारों से परे भी एक जीवन है और मुझे उस अंधेरे में रहने की जरूरत नहीं है।
हमचे घरात हातभार पण लावायला लागलो।
डेयरी किसान मंजुला गुरुनाथ के शब्द। मंजुला जैसी महिलाओं के घर की चारदीवारी के दायरे से बाहर निकलने का मतलब हुआ वित्तीय सफलता, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता। IFAD द्वारा वित्त पोषित इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वयं सहायता समूह बनाकर तकनीकी प्रशिक्षण, व्यवसाय विकास कौशल और वित्त तक सदस्यों की पहुंच बनाई गई।
हमने स्वसहायता समूह से ऋण लिया और पेपर व प्लेट बनाने वाली एक हाइड्रोलिक मशीन खरीदी। उस मशीन के इस्तेमाल से हमने रोजाना अधिक पेपर प्लेटें बनाना शुरू की। हमने अपनी लागत का हिसाब लगाया तो देखा कि हमारा मुनाफा बढ़ गया।
दूसरा पण घर बांधला।
प्लेट निर्माता कांता अशोक थोरवे के शब्द। हर एक स्वयं सहायता समूह को अपनी व्यापारिक योजना के लिए बैंकों से औपचारिक ऋण प्राप्त करने की सुविधा है। ये इतना सफल रहा है कि इसकी वापस भुगतान की दर 99.5% तक है। अब सभी महिलाएं अपनी धनराशि मिलाकर इसे एक दूसरे को उधार देकर सीधे एक दूसरे की मदद करने लगी हैं।
जब से मेरा सिलाई व्यवसाय बढ़ा है मैंने महिलाओं को सिलाई सिखानी शुरू कर दी है, जिससे मुझे अधिक आमदनी भी होने लगी है। इससे मुझे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने में मदद मिली है।
तेजस्विनी कार्यक्रम से जुड़ी दर्जी संगीता एस चौघे के शब्द। इसके अलावा वो अपने ऊपर असर डालने वाले मुद्दों का सामूहिक रूप से इन समूहों के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर समाधान निकालते हैं। स्वयं सहायता समूह के लगभग 30,000 सदस्य अब राजनीतिक संस्थानों का भी हिस्सा हैं, जिनमें वो उन मुद्दों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उन्हें प्रभावित करते हैं।
मेरी स्व सहायता समूह की महिलाओं को मुझ पर विश्वास है। उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर मुझ पर भरोसा जताया है क्योंकि मैं उन्हीं में से एक हूँ। उन्हें मालूम है कि मैं उनके लिए और हमारे गांव के विकास के लिए काम करूँगी।
ग्राम परिषद की सदस्य नेहा नीलेश थोरवे के शब्द। व्यवसायिक सफलता हासिल करने के साथ ही ये महिलाएं स्थिति के अनुसार खुद को ढालने में भी सक्षम हैं। COVID-19 संकट के दौरान सभी सदस्यों को बदलती जरूरतों के अनुसार कामकाज में बदलाव लाने में मदद की गई, जैसे कि ये दर्जी अब कोविड की रोकथाम के लिए मास्क बनाने में जुटी हैं।
मैं मास्क कम से कम 4,000 पीस कटिंग करती हूँ और दूसरे भी है कटिंग जो घर पे ले जाते हैं, कटिंग करके बेचते हैं। ऐसा 8,000 हमारा पीस होता है कटिंग।
दर्जी समसुनिसा इकबाल कुटे के शब्द। स्वयं सहायता समूहों का सामूहिक समर्थन और लचीलापन ही वो वजह है जिसकी बदौलत तेजस्विनी की 10 लाख महिलाएं राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनी हैं।
मानवता की सेवा में जुटे कार्यकर्ताओं और समाज सेवियों को दिए जाने वाले नेल्सन मंडेला पुरस्कार के विजेताओं के नामों की घोषणा कर दी गई है। कैंसर पीड़ित बच्चों की मदद के लिए वर्षों से प्रयासरत ग्रीस की मारियाना वार्डिना योनिस और महिला जननांग विकृत यानी FGM का खात्मा करने की मुहिम में अहम भूमिका निभाने वाले गिनी के डॉक्टर मारिसाना कोयाते को वर्ष 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। अब महबूब खान को इजाजत दीजिए।